अच्छा, फकुलना या आदम इन हाजा अदुव्वु लका वली ज़ौजिका। तो हमने कहा ए आदम, उसी दिन बता दिया था, ए आदम ये है दुश्मन आपका भी और आपकी बीवी का भी दुश्मन है। हालांकि बीवी आदम अलैहि सलाम ने भी कुछ नहीं किया था, बीवी को तो सजदा भी नहीं करने का कहा गया था, मगर वो सारी जुर्रियत का ही, आदम की सारी औलाद का ही दुश्मन है, सारी इंसानियत का ही दुश्मन है, किसी का भी दोस्त नहीं है वो। फला युखरी जन्नत कुमा मिनल जन्नती, तो देखना ध्यान रखना ये आपको जन्नत से निकलवा ना दे, इसका ये एजेंडा होगा, ये ध्यान रखना, बी केयरफुल। यानी उस वक्त ही आदम अलैहि सलाम को अलर्ट कर दिया गया था, ये नहीं था कि उनको पता ही नहीं है, बता दिया गया था ये दुश्मन है। और देखिए दुश्मन की ही जब कह दिया जाए ना दुश्मन है, तो आप ये नहीं होता कि उसके बाद ये कहा जाए वो आपसे ये करेगा ये करेगा, बल्कि दुश्मन कह देना ही काफी है। अब इसका मतलब वो जो भी करेगा ना वो आपको नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो दुश्मनी ही करेगा, वो मुखालफत ही करेगा, ठीक है। तो दुश्मन कह के बता दिया गया, इसकी चालों से अब आपने केयरफुल रहना है अब, और खास तौर पे ये आपको जन्नत से निकलवाने की कोशिश करेगा। तो ना निकलवाने की ना निकलवाने पाए वो आपको जन्नत से फतशका, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, वरना आप मुशक्कत में पड़ जाएंगे। अब ये क्या बात है कि बहुत गौर से आप जरा नोट करें, ये बात बहुत गहरी है। यहाँ पे सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम ही है और वो ही जानता है। पहले आया ए आदम आपको और आपकी बीवी का ये दुश्मन है, आप दोनों को जन्नत से निकलवाने ना पाए शैतान, कुमा इसकी दुश्मनी दोनों के साथ है, दोनों को जन्नत से फतशको, ये क्या है वाहिद है, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। किससे बात हो रही है, फकुलना या आदमो, आदम अलैहि सलाम से बात हो रही है। फिर क्यों नहीं कहा गया कि आप दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे, आप दोनों मुशक्कत में पड़ जाएंगे। ये वाली मुसीबत कौन सी है पहले तो ये समझा जाए कि कौन सी मुसीबत की यहाँ बात हो रही है। अच्छा ये एक तो ये बात आपको बता दूं कि आदम अलैहि सलाम को अकेले कहा गया है, और तशका में हार्डशिप, और यहां दुनिया की मुशक्कत की बात है, और ये मुशक्कत आदम अलैहि सलाम के ऊपर पड़नी, क्योंकि आदम से बात हो रही है, दोनों को नहीं कहा गया तुम दोनों मुसीबत में पड़ जाओगे, मुशक्कत में पड़ जाओगे, मेहनत में पड़ जाओगे। यानी कहा गया कि ए आदम आप मुशक्कत में पड़ जाएंगे, आप इसलिए कि आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, हेड ऑफ द फैमिली, और आप मुश्किल में पड़ेंगे, आपके ऊपर मुशक्कत आएगी, क्योंकि आदमी की ही जिम्मेदारी है कि वो ख्याल रखे अपने घर वालों का, उनके वो किसी गुनाह में ना पड़े, उस गुनाह की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो हेड है ना, उसके नीचे आते हैं सब। और दूसरे ये बात के फतशका मतलब है कि मुश्किल में पड़ जाएंगे, कौन सी मुसीबत की वो आपको आगे से पता चलेगा, दो आयतें पढ़ लें फिर उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। इन्ना लका अल्ला तजुआ फीहा वला तआरा, बेशक तुम्हारे लिए यहाँ पे तो ना कोई भूखे होगे इसमें और ना तुम इसमें नंगे हो। इसमें किसमें, हाँ की जमीर किस तरफ है कि ये यानी जन्नत में है ना, कि तुम्हें जन्नत से ना निकलवा दे, पिछली आयत में है ना कि मिनल जन्नत, यहाँ पे जन्नत में तो आपके ना भूख है, इसलिए कि इतना सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, सब नेमते हैं, और ना ही तुम यहाँ पे नंगे हो, इसलिए कि जन्नत के लिबास पहने हैं। वह इन नकला तजमा उफी है, और ना आपके लिए यहाँ पे प्यास है, वला तजहा, और ना धूप लगी है, यानी खाना पीना पहनना ओढ़ना और शेल्टर, जिसको हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, कपड़ा भी है, रोटी भी है, पानी भी है और लिबास भी है। ये इंसान की फोर बेसिक नीड्स हैं, हर इंसान की, वो यहां पे तुम्हें मुफ्त मिल रही है जन्नत में। अगर अब पीछे जाए, अब ये बताएं पीछे जाए, फतश कौ पे जाए, अगर तुम्हें यहां से वो निकलवा देगा तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे इन नीड्स के मामले में। यानी यहां तो तुम्हें बस सहूलत मिल रही है, जितना मर्जी खाओ पियो, महल्लात हैं, पानी के चश्मे हैं, नहरें बह रही हैं, दूध की, इसकी, और फिर तुम्हारे लिए कोई पहनने का, उड़ने का, वो भी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसने तुम्हें यहां से निकाल दिया ना, तो फिर तुम्हें इन्हीं चीजों के लिए मुशक्कत करनी पड़ेगी, और ये तुम्हारी जिम्मे, तुम मुश्किल में पड़ोगे ए आदम, तुम, बीवी नहीं तुम्हारी। इसलिए इसी आयत से उलमा ने ये, देखें ये निकाली है, इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि इससे पता चलता है कि ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत को ये चीजें प्रोवाइड करे, मर्द की जिम्मेदारी कि वो औरत को खाना पीना, उसका लिबास और उसको जो भी छत है वो मुहैया करे। समझ आई बात, कितनी गहरा पॉइंट उलमा कैसे निकालते हैं। तो यानी अगर तुम जन्नत से निकल गए, ये चार बेसिक नीड्स हासिल करने के लिए ना तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वाकई इंसान देखे सारी जिंदगी यही चीजों के पीछे भागता रहता है, और फिर इसी की फरावानी चाहता है। तो इबलीस अगर तुम्हें निकलवा देगा यहां से, तो तुम फंस जाओगे। तो इसलिए फिर तुम्हारी जिंदगी इन्हीं कामों में गुजरेगी। तो मुशक्कत में खुद को अगर डालने से बचना है, तो उसकी बातों में ना आना। और आदम ही के ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए वाहिद का सीगा है, आदम को ही कहा गया। तो शौहर की जिम्मेदारी है, ये बीवी की नहीं है। आज औरत मुसीबत में पड़ी इसलिए कि लेकिन बच्चे भी पैदा वही करे, घर के काम भी वही करे, और रोटी कपड़ा मकान की भी प्रोविजन उसी के जिम्मे लगा दी गई। तो तुम ही लेकर आओ, घर का बजट तुम चलाओ, ग्रोसरियां तुम लेकर आया करो, घर के उसके अंदर तुम हिस्सा डालो खरीदने में। हालांकि उसकी जिम्मेदारी नहीं, ये मर्द की जिम्मेदारी है। फिर कहते हैं वो तो आज के यहाँ के मर्द जो है ना, वो तो अपनी बीवियों के साथ खड़े होकर किचन में भी काम करते हैं, वैक्यूम भी करते हैं, ये करते हैं, क्यों ना करें? क्या वो कुछ भी ना करें? वो सब वो भी वो ही औरत करे और बाहर भी औरत करे। जब आपने निजाम ही उलट दिया, जब आपने औरत से आदमियों वाले काम कराए, तो फिर आदमी क्यों ना औरत वाले काम करे? तो ये तो अल्लाह ताला ने शुरू के अंदर ही बता दिया था, पहले दिन, कि देखो ये जो सारा प्रोवाइड करना है ना, ये मर्द तेरी जिम्मेदारी है, कयामत तक के लिए ये असूल तय हो गया। तो और तो पहले दिन से अल्लाह ताला ने हम लोगों को आजाद कर दिया फिक्रे माश से। या तो हस्बैंड करेगा, नहीं तो बाप करेगा, नहीं तो बेटा करेगा, नहीं तो भाई करेगा। लेकिन हमने खुद को मुसीबत में खुद डाल दिया कि हमने कहा हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें बराबर के वो चाहिए हकूक, और उस बराबर के हकूक में क्या है कि मैंने नौकरी करनी। तो फिर उस जब नौकरी भी उसके ऊपर ही पड़ गई, और घर भी उसके ऊपर पड़ गया, सारा कुछ ही उसके ऊपर पड़ गया। आदमी तो सिर्फ नौकरी करता है, वो कौन सा बच्चे पैदा करता है, ना बच्चे संभालता है, ना घर देखता है। घर में कुछ भी गलत होगा तो फिर भी औरत ही इल्जाम उसके ऊपर ही आएगा, ये इसने नहीं बच्चों को सही देखा, इसलिए नहीं घर सही देखती। चाहे वो बेचारी बाहर भी मर रही है, खप रही है, वो घर पे भी आके मर खप रही हो, तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो मर्द को अल्लाह ताला ने इसीलिए मजबूत बनाया कि उसने ये सारे माश का इंतजाम करना है और औरत को बिठा के खिलाना है। तो ये हमें बहुत यहां से इस एक बात से हमें ये पता चलता है। दूसरा, आज औरतें कहती हैं ना कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, मैं कमा नहीं सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकती। हालांकि देखें, कमाए बगैर ही उसको सब कुछ मिलेगा, और मर्द भी सुन लें कि उनकी जिम्मेदारी है। और लेकिन ये भी हमें पता चलता है कि मर्द की जिम्मेदारी जहां पे भी नान नफके की जिम्मेदारी होगी, किसी का भी ये अदा करना है, चाहे बीवी का है चाहे किसी का भी, तो मर्द के जिम्मे सिर्फ ये चीजें देना है। ये नहीं है कि और भी लग्जरी जितनी है वो हमें लाके दो, वो भी आज तो वो भी चीजें जरूरत बना दी गई है ना, कि वो भी आपको प्रोवाइड करनी है, हमें वेकेशन पे भी लेके जाना है, हमें ये भी खरीद के दो, हमें वो जेवरात भी खरीद के दो, हमें फलाना भी चीज करके दो। तो ये चीज नहीं, ये बेसिक नीड्स हैं जो आदमी के जिम्मे है प्रोवाइड करना इसके। लेकिन आज हमने अपनी नीड्स ही इतनी, लग्जरीज को भी नीड्स कह के हम कहते हैं कि ये भी जरूरत है, सेलफोन भी जरूरत है, ब्रांडेड पर्स भी जरूरत है, और ज्वेलरी भी जरूरत है मेरी। तो जब ये हमें इतनी चीजों को कर लेते हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है फिर, ठीक है? सिर्फ ये बेसिक नीड्स उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे। और इसी वजह से फिर हम मुश्किल में पड़ते हैं, क्योंकि फिर सारी इतनी लग्जरीज तो एक बंदा कमा के लाके पूरी नहीं कर सकता, तो फिर जाहिर है फिर औरत को भी साथ कमाना पड़ता है, क्योंकि हमने अपनी ख्वाहिशात बढ़ा ली हैं। फिर क्या हुआ, फवसवसा इलैहि शैतान, तो वसवसा डाला इसकी तरफ शैतान ने। ये जो वस वसा लफ्ज है ना, इसमें क्या है, तकरार आ रही है ना, वस वसा, इसी से आप इसके मीनिंग को समझ लेंगे। वसवसा भी एक दफा नहीं होता, जैसे वस वसा में तकरार है, रिपीटेडली है ये लेटर्स, इसी तरह वसवसा भी बार बार आता है, बार बार आता है, नॉन स्टॉप। वो बदबخت पता नहीं कितना दफा आया इनके पास, इन दोनों के पास इतनी दफा आया, कुछ उसने एक दफा थोड़ी आके वसवसा डाला। काला या आदम, उसने आगे कहा आदम। अब वो कहते हैं ये बाज़ ईसाइयों के अंदर ये है कि नहीं, हव्वा को वसवसा डाला था, उसने ही आदम को ऐसी पट्टी पढ़ाई ना, उसकी वजह से ही आदम डूबे, ऐसी बात नहीं है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, और फिर वो औरत के ऊपर डाल के फिर उसको सारा इल्जाम दे देना, और फिर उसके बाद कहना कि उसको ये जो सारा पीरियड्स का और ये सारा ये उसकी सजा है, खुद ही बनाई हुई चीजें। ए आदम, हल अदुल्लु का आला शजरतिल खुल्द, क्या मैंने तुम्हें बताऊं ना तुम्हें ऐसा दरख्त के बारे में जो हमेशगी का है, यानी उसको खा के तुम हमेशा जिंदा रहोगे, वो मुल्क ला यबला, और ऐसी बात है जो कभी पुरानी नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी, वो कभी पेरिश नहीं होगी, ऐसी बादशाहत मिल जाएगी, ऐसी सल्तनत मिल जाएगी। अब देख लेनी है, ये भी इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि मैं जिंदा रहूं। दूसरी जगह भी आया, दूसरी जगह आया कि तुम मलकैन बन जाओगे, दोनों फरिश्ते बन जाओगे। भाई क्या बात होगी फिर तुम्हारी, कभी तुमसे कोई नाफरमानी होनी ही नहीं, फरिश्तों की तरह रहोगे तुम, और देखो फरिश्ते कितने अल्लाह के फरमान से, तुम भी ऐसे होगे। तो ये कहीं कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इसलिए कि शैतान ने एक तरह से थोड़ी उनको बताया, पता नहीं कितनी कितनी आके बातें करता रहा। और वाकई जब ये अपने वसवसे डालने पे आता है, तो आप देख लेना हमने किसी गुनाह से बचना हो, लेकिन कितनी तावीलें आती हैं जहन में, हाँ नहीं फिर इस तरह, हाँ नहीं फिर ऐसे, वो शैतान सुझा रहा होता है, वो शैतान बार बार वसवसे डालता है, कितने बहाने जहन में लेकर आता है, कितनी बातें। तो वो एक दफा थोड़ी आगे कह रहा था, बार बार आगे कह रहा है, कभी कह रहा है तुम फरिश्ते बन जाओगे, कभी कहता देखो ना तुम नहीं चाहते कि तुम हमेशा जिंदा रहो। आप देख ले, हम औरतों को अगर कोई कह दे कि एक ऐसी दवाई आ गई है, अगर आप खा लेंगे ना कभी बूढ़ी ही नहीं होगी, आपके रिंकल्स ही नहीं पड़ेंगे, हमेशा जवान रहेगी, हम सारे चाहे वो हराम हो हलाल हो भागे चले जाएंगे। हाँ चाहे शायद कोई थोड़े दिन बैठ जाए, फिर उसके बाद कहेगा नहीं, हाँ देखो ना वैसे खा तो लेनी चाहिए, वैसे इसमें क्या हरज है, वैसे मेरी तो मजबूरी है, वैसे तो मेरे हस्बैंड के लिए मैं अच्छी रखना चाहती हूँ, वैसे तो मैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग के अंदर चीजें आती, कितने गुनाह है ना जो हम इस तरह से सोच के करते, नहीं हस्बैंड के लिए अच्छी लगना चाहिए, फिर वो तो उसके लिए ऐसा होना चाहिए, फिर नहीं ये तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, नहीं देखो सारे ही तो कर रहे हैं। तो वो एक बहाना नहीं आता, हजारों तरफ से चीजें दिमाग के अंदर आ रही थी। उसने कहा था ना कि मैं राइट से भी आऊंगा, लेफ्ट से भी आऊंगा, आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, ये उसने कहा था। वो हर तरफ से आता है, इधर से आता है, फिर एक बात कहता है, फिर इधर से आता है, वो गिव अप थोड़ी करता है। तो उसने गिव अप नहीं किया, पता नहीं कितना अरसा वो इनको कहता रहा, इस तरह सिखाता रहा बातें, सुझाता रहा बातें। ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक दफा आदम अलैहिस्सलाम को कहा तो आदम फौरन उठ के चल पड़े और जाके फल खा लिया, ऐसा नहीं हुआ। तो वो तो तुला ही रहा, और यही वो हमारे साथ करता है, वो हिम्मत हारता ही नहीं है। लिहाजा उसने तो मिशन पकड़ा ही हुआ ना, तो आखिरकार वो तो कामयाब हो ही गया। फअकला, तो उन दोनों ने खा लिया, ऐसे नहीं कहा गया कि हव्वा ने जाके उसको कहा तो वो फिर वो फिसला तो फिर उसने खाया, हव्वा को ही शैतान बना दिया, अस्तगफिरुल्लाह अपनी माँ को ही। तो देखिए किस तरह से इन लोगों ने गलत वो किया, तो दोनों ने खाया मिनहा, इसमें से जूं ही दोनों ने खाया, फबदत लहुमा सौआतुहुमा, हुआ तो उसी वक्त उनके प्राइवेट पार्ट्स खुल गए, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, और कुरान का देखे ना, कुरान पाक प्राइवेट पार्ट्स की नाम की नहीं बात करता, बल्कि मैंने आपको बताया सौ उसको कहते हैं जिसको एक्सपोज करना इंसान के लिए शर्म आती है। तो अल्लाह ताला ने कुराने पाक में ना इन चीजों को जो काबिले शर्म है उनके नाम एक्सप्लिसिटली नहीं लिए हैं, बल्कि उनको ढके छुपे अल्फाज के अंदर बताया गया, क्योंकि बताना भी है लेकिन साथ ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप खोल के। तो हमें भी चाहिए कि जब हम ऐसी बातें करें ना तो ढके छुपे अल्फाज इस्तेमाल करें ना, कि बिल्कुल एकदम अच्छा नहीं लगता कि हम वो वर्ड्स बोले हैं कि भाई ऐसे या ऐसे, वो कहना अच्छी बात नहीं होती। तो उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के ऊपर खुल गई। वतफिका यखसिफानी अलैहिमा मिन वरक जन्ना, और उन्होंने अपने ऊपर जल्दी से चिपकाना शुरू कर दिए। जन्नत के पत्ते, दरख्तों के पत्ते, वही उनको समझ आया। उन्होंने फौरन से, जरा भी देर नहीं की। क्यों? हालांकि उन दोनों तो एक दूसरे के महरम थे, मियां भी थे। फिर वहां पे उनकी प्राइवेट जन्नत थी, वो कौन सा, वहां पे कोई और लोग आ रहे थे, कोई प्राइवेट बीच है वहां पे, लोग बैठ जाते हैं कि भाई हम तो अगर प्राइवेट बीच में क्या, आप तो पब्लिक बीचेस में भी नंगे होकर घूमते और कोई शर्म और हया नहीं है। और तो उन वो तो वहां पे बिल्कुल अकेले थे दोनों, कौन उनको देख रहा था वहां पे, और ना ही एक दूसरे से उनका कोई पर्दा था। दोनों एक मियाँ बीवी थे, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा जिसमें कोई एक दूसरे का लिबास होते। तो लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे दिखा रहा है कि फितरी हया अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाली है, और उसका तकाजा ये है कि इंसान अपने आप को कवर करे। ये शैतानी सोच है कि नंगा कर लो आज अपने आप को। शैतान नंगा करवाता है, कभी गले इतने डीप बनवा लेता है, कभी स्लीवलेस बाजू, कभी टांगे आधी आधी नंगी, कभी स्कर्टें पहन लो, इसमें खूबसूरती है नहीं। ये तो इंसान की हया के खिलाफ है, इसकी फितरत के खिलाफ है। और शैतान यही कहेगा, इंसान को नंगा करेगा, कभी उसको कवर नहीं होने देगा। और यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि हव्वा तो अपने आप को कवर करने लगी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की खैर थी, वो तो मर्द थे। कई दफा हम सोचते हैं ना मर्दों को क्या है, नहीं, आदम अलैहिस्सलाम भी, देखें यहाँ पे ड्यूल का सीगा है, यक्सिफानी दोनों चिपकाने लगे, तफ़ीका दोनों लगे। तो ये बात के मर्दों को कोई जरूरत नहीं होती अपने आप को कवर करने की, वो तो नंगे भी फिरते रहे, नहीं। और यहीं से हमें ये समझना चाहिए कि चाहे हम अकेले भी हों घर के अंदर, तब भी नंगे ना फिरे, तब भी नंगे ना फिरे, क्योंकि ये हया के खिलाफ है। इंसान को अपना हमेशा अपने सतर को कवर करना चाहिए। आज तो सतर ही खत्म हो गए ना, आज अब तो यही सतर रख दिया कि इतनी सी एक छोटी सी पतली सी लकीर को आगे से पीछे बांध लो तो ये जो सतर हमने कवर कर लिया, और एक को लकीर को सीने पे बांध लो तो ये भी सतर कवर कर, बाकी सारे नंगे। तो वो तो अपने आप को चिपकाने लगे जन्नत के पत्ते, लिबास नहीं भी मिला तो जो भी मिला जल्दी से की किया। और यहीं से हमें पता चलता है कि देखो कितनी खबासत शैतान की है कि उसने नंगा करने की कोशिश की, और ये इंसान के लिए बेइज्जती है, इसमें शर्फ नहीं है उसका। लिहाजा इंसान इस दुनिया में भी इस शैतान की चाल को खुदा के लिए समझे तो सही। क्यों वो हमें पूरे कपड़े नहीं पहनने देना चाहता? क्यों वो ये दिखाता है कि इसमें खूबसूरती है कि मेरे बाजू नंगे हो? इसमें कैसे खूबसूरती है? वो तो मुझे इतनी हैरत हुई, उन्होंने कहा जी वो जो जानवर भी तो नंगे फिरते हैं, तो इंसान भी नंगा फिरे, इंसान भी तो एक सोशल एनिमल, वो तो जानवरों की सतह पे आके जिंदा रहना चाहते हैं, जानवर के बराबर होना चाहते हैं। उस बेचारे की तो कल ही नहीं है, उसको तो अल्लाह ताला ने नेचुरली लिबास दे दिया। तुम्हें तो अल्लाह ने लिबास तुम्हारे लिए उतारा है खास इंसान के लिए, जन्नत में भी लिबास के साथ थे, नंगे नहीं फिरा करते थे वहां। लिहाजा ये चीज को समझना चाहिए कि हम इस चाल में ना आए, मत अपने आप को नंगा करें, शैतान की चाल को समझें। उसने आपके माँ बाप को नंगा करा दिया था, क्यों आज भी हम उसी चीज के दर पे हैं? और हम ये समझते नहीं कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है, ये वसवास है उसके, ये जो हमारे दिमाग के अंदर डालता है ये उसके वसवसे। अल्लाह ताला ने कवर होने में इज्जत रखी, अनकवर होने में नहीं। अब वो कहते हैं कि साड़ी का ब्लाउज भी इतना छोटा होना चाहिए, वही तो सबसे खूबसूरत लगती है, ये किसने दिमाग में डाला? और जितना टाइट हो के बिल्कुल पता ही ना चले कि पहना भी है कुछ के नहीं पहना हुआ, वो ही सबसे खूबसूरत है, ये कैसे जहन में आया? ये शैतान डाल रहा। आसा आदमु रब्बहु फगवा, तो नाफरमानी की आदम ने अपने रब की, तो वो भटक गए। और देखें आप कि आदम अलैहिस्सलाम से एक भूल हुई थी, ठीक है, एक भूल हुई है, और वो भूल उनकी नाफरमानी गर्दानी गई। क्यों? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे, और जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी, वो कहते हैं ना हसनातुल अबरार सैयातुल मुकर्रबीन, जो आम लोग नेक लोगों की नेकियां भी हैं वो मुकर्रबीन की बुराइयां हैं। मिसाल के तौर पे एक काम, एक चले मैं ऐसे आपको छोटी सी मिसाल से कहती, ये जो आम लोग हैं वो अपनी 9 to 5 जॉब करें तो उसके ऊपर उनको बहुत बड़े तमगे मिल जाते हैं, बड़ा वो मिल जाता है कि जी बड़ी अप्रिसिएशन, आपने 9 to 5 अपनी जॉब पूरी कंप्लीट की। लेकिन मसलन है जो उस कंपनी का जो सीईओ है, बड़ा है, वो अगर कहे कि मैंने तो बस 9 to 5 ही जॉब करनी है, उसके बाद तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और वो चला जाए घर, तो उसको कहा जाएगा नहीं उसको तमगा मिल रहा है इस बात के ऊपर, इसको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, तुम तो बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा, तुम्हारा ओहदा बड़ा है, तुम्हें तो ये नहीं देखना कि क्या टाइम है, तुम्हें तो हर वक्त ही हाजिर रहना है और हर वक्त ही इस चीज को देखना कि ये मैं सही करूं और मैं कंपनी का फायदा जिसमें हो। इस तरह जो आम लोग है ना, हमारे जैसे आम लोग कोई भूल चूक कर लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की खता और निसियान, भूल जो है ना, खता गलती से कोई चीज होने जाना, भूल जाना कोई चीज, ये माफ है। ठीक है, तो आम उम्मतियों के लिए तो ये है, लेकिन देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर कह दिया कि मैं शहद नहीं खाऊंगा, आम लोग कहते हैं शहद नहीं खाऊंगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फौरन आपके लिए आयात तो उतर गई कि नहीं आप नहीं इस तरह कह सकते। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि जो पैगंबर है, क्योंकि उसका दर्जा इतना बड़ा होता है ना, उसकी छोटी सी चीज भी जो है ना वो गलती शुमार की जाती है, जो आम लोगों के लिए कोई काबिले माफी है, वो देखिए वो गेट अवे कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो बाज वो हालांकि भूल थी उनकी, भूल थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी पकड़ हुई, उसके ऊपर भी उनको पूछ हुई उनकी। और फगवा का मतलब ये भी है मकसद को ना पहुंच सकना, महरूम हो जाना, तो महरूम कर दिए गए उन किन चीजों से, यहाँ पे भटकने से ज्यादा बेहतर है कि हम इसका ये तर्जुमा करें कि वो महरूम कर दिए गए, यानी ये जन्नत से महरूम कर दिए गए, वो चार जो बेसिक चीजें उनको वहां पे मुफ्त में मिल रही थी उनको उनसे महरूम कर दिया गया, दुनिया में उतार दिया गया। अब वो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है यही रोटी पानी के लिए और यही पहनने के लिए और यही एक छत के लिए, इंसान पूरी पूरी जिंदगियां लगा देता है इसी में खपा पड़ा रहता है। सुम मजतबाहु रब्बुहु फताब अलैहि वहदा, फिर अल्लाह ने उसको चुन लिया। अब यहाँ के दो माने किए गए, बाज मुफसरीन ने ये माना लिखा है कि इजतबा का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अब इनको अपना नबी बनाया, यानी पहले वो नबी नहीं थे, वो ये कहना चाहते हैं कि पहले जो उनसे गलती हुई वो नबूवत की जिंदगी में नहीं हुई थी, वो नबी नहीं थे उस वक्त, अब वो नबी बने। हालांकि ये कुछ ज्यादा बात सही नहीं लगती, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया, यानी अल्लाह ताला ने उनको मेकअप करने दिया, अपनी जो मिस्टेक थी उससे वापस पलटने दिया, उनको तौबा का मौका दे दिया, तौबा का मौका मिलना चुन लेना। इसलिए कि देखें अल्लाह ताला ने इनको अल्फाज भी सिखाए, आप इस तरह से मेरे सामने तौबा करें, रब्बना ज़लमना अन्फुसना वाली दुआ जो है ना वो अल्लाह ताला ने इनको सिखाई थी, तो अल्लाह ताला ने इनको दुआ भी सिखाई, इनको पलटने का मौका भी दे दिया, इनकी दुआ को कबूल भी कर लिया, तौबा को कबूल भी कर लिया। इससे पता चलता है कि बंदा जब खुद इरादा कर लेना अल्लाह की तरफ लौटने का और पछताए अपनी गलती के ऊपर कि अल्लाह मुझसे भूल हो गई है, तो अल्लाह ताला फिर उसको सेलेक्ट कर लेता है, अल्लाह ताला उसको सेलेक्ट कर लेता है, अल्लाह ताला ही फिर उसको तौबा का तरीका भी बताता है, रास्ता भी बता देता है, सुझा देता है, उसको दिल के अंदर डाल देता है, अल्लाह ताला ही उसकी तौबा की तौफीक भी दे देता है, अल्लाह ताला ही फिर उसकी तौबा कबूल भी कर लेता है। बात यह है कि इंसान के अंदर कितनी तड़प है कि मैंने पलटना है, मैंने अल्लाह मैंने इस जिंदगी से मैंने तौबा करनी है, अल्लाह मैंने तेरी तरफ आना है, अल्लाह मैं नहीं इस जिंदगी में रह सकती अब कि मैं ये गुनाहों की जिंदगी में चलती रहूं, तो अल्लाह ताला फिर सिलेक्ट कर लेता है। तो उन्होंने दूसरे मुफस्सिरीन ने कहा सिलेक्शन का मतलब ये है कि अल्लाह ने सिलेक्ट कर दी कि तौबा की तौफीक अल्लाह ताला ने दे दी, तौबा कबूल भी कर ली, तौबा के रास्ता भी बता दिया, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह की सिलेक्शन होती है जब अल्लाह ताला किसी को तौबा की तौफीक दे दे, तो सारों को तो तौफीक भी नहीं मिलती ना, आपने देखा है। और लेकिन ये समझना चाहिए कि इससे ये ना सोचे कि इससे आदम अलैहिस्सलाम की शान में कोई फर्क आ गया, नहीं, अल्लाह ताला ने देखें इस तरह से इंसानियत को भी सिखाया। और वो कहते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम, हदीस में आता है मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपने हमें भी जन्नत से निकलवाया, आप ना वो खाते तो हमारे लिए भी ऐसा ना होता। तो उन्होंने फरमाया कि मूसा आपको अल्लाह ताला ने अपना कलीम बनाया, अपना रसूल बनाया, और आपको नहीं पता कि मेरी तकदीर में पहले लिखा हुआ था कि मैंने ऐसे ही करना है। तो अल्लाह ताला ने इंसानियत को सिखाना था, एक तरीका, 10-1. फताब अलैहि वहदा, तो बस मेहरबान हुआ उस पर और हिदायत बख्शी, यानी मेहरबान हुआ अल्लाह ताला भी अपनी रहमत और बख्शीश के साथ उनकी तरफ पलटा, यानी उनकी तौबा भी कबूल की, वहदा और उनकी रहनुमाई भी की अल्लाह ताला ने. वो भूल में इस दफा पड़ गए थे, अल्लाह ताला ने आगे उनको थाम लिया, उनकी हिफाजत की अल्लाह ताला ने, ठीक है, फिर नहीं उनसे गलती हुई. कौला हबी तो अमिनहा जमीआ, फिर फरमाया उन दोनों से उतर जाओ. इससे कौन दोनों? बाज ने लिखा है कि आदम और हव्वा, और बाज ने लिखा है कि नहीं, आदम अलैहिस्सलाम हव्वा एक तरफ एक ग्रुप और दूसरी तरफ शैतान, ठीक है, सब के सब उतर जाओ, यानी तुम भी और तुम्हारी पुश्तें, तुम्हारी पुश्तों में भी जितनी तुम्हारी जुर्रियत है, तुम्हारी औलाद है सारी, यानी अभी तो दुनिया में नहीं आई, लेकिन सब के सब उतर जाओ. बादुकुम ले बादिन आदु, तुम में से बाज के दुश्मन है, आदम और इबलीस तो दुश्मन हैं ही एक दूसरे के, और उसके अलावा भी आदम की अपनी औलाद के अंदर भी दुश्मनी होगी, जब शैतान के पीछे कुछ औलाद चलेगी और कुछ औलाद जो थी वो हक के ऊपर रहेगी, तो हक और बातिल में जंग रहेगी. फिर कुछ शैतान के ग्रोह के लोग बन जाएंगे और कुछ आदम के ग्रोह के लोग बन जाएंगे. तो सब उतर जाओ, अब वहां रहोगे और आपस के अंदर दुश्मनी रहेगी. ये दुश्मनी उस वक्त से जो चली है ना, वो चलती ही रहेगी आगे, अब आदम के बच्चों में और शैतान के बच्चों में, या शैतान के लश्करों के अंदर, चाहे वो इंसानों में से हो या जिन्नों में से हो, तो ये चलता रहेगा. फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर कैसे फैसला होगा, कैसे बात समझ आएगी कि क्या किया जाए. फिर अगर आए, यानी जब जब आए मेरी तरफ से, मिन्नी मेरी तरफ से हिदायत, फमन तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यशका, तो जब मेरी तरफ से हिदायत आएगी, तो याद रखे मिन्नी है, ये नहीं कि कहीं से भी आ रही हो तो उसको ले लें, कहीं से भी आ रही पे नहीं लेना, जो अल्लाह की तरफ से हिदायत आए, जो जब जब आए, यानी अब उस वक्त ही बता दिया गया था कि हिदायत अल्लाह ताला उतारेगा इस जमीन पे, जो भी उसको फॉलो करेगा ना उस हिदायत को, और क्लोजली फॉलो करेगा, इत्तेबा है मैंने आपको आज बताया, तो वो भटकेगा नहीं और ना ही वो मुसीबत में पड़ेगा. और फिर वो ही वाली बात कही गई, वला यशका, पीछे आया फता शका, तो जो इसकी पैरवी करेगा वो मुश्किल में नहीं पड़ेगा. क्या मतलब, उसके ऊपर मनोसलवा तो नहीं उतरेगा. लेकिन देखिए ना, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसने अल्लाह का तकवा इख्तियार किया, अल्लाह ताला उसके लिए वहां से रिस्क पहुंचाता है जहां से उसने गुमान भी नहीं किया होता, और उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जो उसने सोचे भी नहीं होते. अल्लाह उसके लिए जरूर कोई मखरज निकालता है, कोई एग्जिट, कोई रास्ता उसके लिए जरूर निकालता है. तो वाकई के जब इंसान इस वही का इत्तेबा करता है, तो ये जो इसके पीछे चलेगा कभी गुमराह नहीं होगा, कभी भटकेगा नहीं. ये कुरान है, अल्लाह की वही है, ये अल्लाह की तरफ से हिदायत है, और जो इसके पीछे चलेगा मुसीबत में नहीं पड़ेगा, मिजरेबल नहीं होगा इस जिंदगी के अंदर. अल्लाह ताला हमें इस कुरान की हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, वो हिदायत जो अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमा दिया था कि हिदायत आती रहेगी, जितने पैगंबरों पे हिदायत का पैगाम आया वो सब इसमें, जब जब पैगंबर आएंगे, जब जब वो अल्लाह की तरफ से हिदायत लेकर आएंगे, तुम्हारी नस्लों में जो भी इसकी पैरवी करता रहेगा, उस वो भटकेगा नहीं, फिर वो शैतान के पीछे नहीं जाएगा, वो रास्ता गुम नहीं करेगा. अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए, शैतान के वसवास से हमें महफूज रखे, इसके ट्रैप से महफूज रखे. अल्लाह ताला हमें इस हिदायत की इत्तेबा करने की तौफीक अता फरमाए. सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. तिलावत सुनिए.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.